पृष्ठ संख्या 84। भारतीय कविता में तीन चार कवि ऐसे हैं जिनसे दिनकर की कविता की समानता देखी जा सकती है। बंगला के काजी नजरुल इस्लाम, उर्दू के इकबाल एवं दूसरे जोश। इन कवियों की चेतना में जो शक्ति और आग है, वही शक्ति और आग दिनकर की कविता में दिखाई देती है। जोश से तो उनका व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छा था। जोश से एक बार दिनकर जी की भेंट हुई। जोश थे वैसे जोशीले आदमी, सहज प्रतिक्रिया करने वाले। जोश के बाद में एक खत में लिखा, हिंद में लाजवाब हैं दोनों, शायर इंकलाब हैं दोनों, देखने में अगरचे जर्रे हैं, वाकई आफताब हैं दोनों। जोश ने अपने बारे में और दिनकर के बारे में यह बात कही है। उनकी कविता की भी लगभग बहुत सारी वही विशेषताएं हैं जो दिनकर की हैं। उनकी इस विशेषता को ठीक से देखना चाहें तो आग की भीख नाम की कविता देखिए। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जैसी प्रेरणादायक कविता की जरूरत थी, वैसी कविताएं रेणुका, हुंकार और सामधेनी में दिखाई देती हैं। दिनकर केवल स्वाधीनता आंदोलन के कवि या राजनीतिक कवि नहीं हैं, संवेदना और विषय वस्तु की जैसी व्यापकता और विविधता उनमें दिखाई देती है, वैसी निराला को छोड़कर बाद के कवियों में कम मिलती है। एक ओर रेणुका, हुंकार और सामधेनी में राजनीतिक चेतना है, तो दूसरी ओर रसवंती और उर्वशी में उद्यम प्रेम भी है। इसलिए दिनकर केवल राजनीतिक कवि नहीं है। इस बात पर गंभीरता से विचार करने और जांच परख करने की जरूरत है कि भारतीय कविता की दो परंपराएं हैं। एक रामायण से जुड़ी हुई कविता की परंपरा, पृष्ठ संख्या 85, जो वाल्मीकि रामायण से शुरू होकर बहुत बाद तक चली आती है। दूसरी महाभारत से जुड़ी हुई भारतीय कविता की परंपरा। कविता की इन दोनों परंपराओं में बुनियादी फर्क है। विद्रोह, नैतिक द्वंद्व, बौद्धिक जटिलता आदि की कविताएं खोजनी हो तो वे महाभारत में मिलती हैं। यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि राम या रामायण की जो काव्य परंपरा है, वह आज दक्षिणपंथियों की काव्य परंपरा बन गई है। अपवाद उसमें भी हैं, असल में उसमें पूजा पाठ की गुंजाइश ज्यादा है। वह गुंजाइश महाभारत में दिखाई नहीं देती। कर्ण या द्रौपदी, यहाँ तक कि भीष्म पितामह के चरित्र में जो नैतिक द्वंद्व है, वैसा नैतिक द्वंद्व भारतीय साहित्य में कहीं दिखाई नहीं देता। दिनकर महाभारत से जुड़ी काव्य परंपरा के कवि हैं। उन्होंने अनेक रचनाएं महाभारत से जुड़ी हुई काव्य परंपरा की लिखी। उन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा है, रश्मिरथी लिखा है। हाल के वर्षों में हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाओं के साहित्य में दो चरित्रों पर सबसे ज़्यादा उपन्यास और कविताएं लिखी गई हैं। एक द्रौपदी और दूसरे कर्ण। भारतीय भाषाओं के साहित्य में बहुत लोगों से पहले दिनकर ने रश्मिरथी लिखा था। महाभारत से सिद्ध होता है कि कर्ण वर्ण व्यवस्था का साक्षात खंडन था। उसने भरी सभा में द्रौपदी के स्वयंवर में यह खंडन किया था, मैं जो कुछ भी हूँ, बाहुबल से जिसको जीतना हो जीते, जो हारे सो हारे। इसका क्या मतलब कि एक आदमी ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, तीसरा शूद्र है। महाभारत में वर्ण व्यवस्था का खंडन दिखाई देता है। जिन लोगों की वर्ण व्यवस्था के खंडन में दिलचस्पी रही है, वह हर हाल में महाभारत की परंपरा से अपने को जोड़ते हैं। दिनकर की काव्य चेतना बहुत व्यापक थी। वह एक ओर महाभारत से तो जुड़ती ही थी, दूसरी ओर आधुनिक काल के जिन कवियों से जुड़ती थी, उसके लिए मैं दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी पर हिंदी में खूब बहस हुई है। उसके पक्ष में जितना लिखा गया है, उससे अधिक विपक्ष में लिखा गया है। रामविलास शर्मा को छोड़कर हिंदी के अधिकांश मार्क्सवादियों ने दिनकर की उर्वशी की कठोर आलोचना की है। दिनकर की उर्वशी को आप देखिए, वह आसमान से उतरी हुई कविता नहीं है। उर्वशी को ठीक से पढ़िए और उसमें चार पांच परंपराएं एक साथ दिखाई देंगी। इसकी जांच परख की जरूरत है। उसको पढ़िए तो रविंद्रनाथ ठाकुर की उर्वशी की याद आएगी, अरविंद की उर्वशी की याद आएगी, विक्रमोवर्षीयम याद आएगा। उसकी संरचना देखिए तो विक्रमोवर्षीयम में संयोग का उद्यम वर्णन नहीं है। दिनकर ने असल में कथा ली है विक्रमोवर्षीयम से और उद्यम श्रृंगार का चित्रण किया है कुमार संभवम से, इसलिए वह सीधे कालिदास से जुड़ते हैं। इतनी व्यापक चेतना का कवि निराला को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। उर्वशी के संदर्भ में इसकी जांच परख करने की जरूरत है। पृष्ठ संख्या 86। हमारे यहाँ कछुआ धर्म बहुत है। हम जो करते हैं वह कहते नहीं और जो कहते हैं वह करते नहीं। मैं ऐसे बहुत से महापुरुषों को जानता हूँ जो रामधारी सिंह दिनकर के उद्यम संयोग वर्णन की निंदा करते हुए उर्वशी की आलोचना करते हैं, लेकिन जीवन में इससे परहेज नहीं है। दिनकर केवल समकालीन संवेदना या स्वाधीनता आंदोलन के कवि नहीं हैं, उनकी संपूर्ण कविता की दुनिया में गहरा और सघन परंपरा बोध है जो संस्कृत, बंगला और उर्दू से एक साथ जुड़ता है। भारतीय कविता की परंपरा और रामधारी सिंह दिनकर के संबंधों पर विचार होना चाहिए। दिनकर आज़ादी के बाद भी राजनीतिक कविता लिखते हैं। दिनकर अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने हिंदी में गौरव की राजनीति की कविता भी लिखी है और पतन की राजनीति की भी। गौरव की राजनीति की कविता देखनी हो तो गांधी पर लिखी कविता देखिए। पतन की राजनीति की कविता के कुछ उदाहरण दूंगा। दिनकर के जमाने का राजनीतिक पतन नाली की तरह था जो आज वह हमारे चारों ओर समुद्र की तरह बह रहा है। दिनकर सत्ता से मजबूरी में जुड़े हुए थे। व्यक्ति के रूप में सत्ता से जुड़ाव के बावजूद कवि के रूप में सत्ता के कटुतम आलोचक थे। यह उन्होंने ब्रिटिश राज में भी किया और यही उन्होंने कांग्रेसी राज में भी किया। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आज साहित्यकारों से लेकर सारे बुद्धिजीवियों का हाल यह है कि गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। कांग्रेसी सत्ता कायम हुई उस पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ने लगे। नागार्जुन ने उपन्यासों में इसकी चर्चा की है। देश में जगह जगह प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थीं और लूट का झूठ का राज शुरू हुआ। उसको लेकर दिनकर ने साल भर बाद ही 1948 में एक कविता लिखी। यह कविता है वर्षगांठ। इसकी कुछ पंक्तियों के जरिए पतन की राजनीति का प्रमाण दे रहा हूँ। टोपी कहती है मैं थैली बन सकती हूँ, कुर्ता कहता है मुझे बोरिया ही कर लो। ईमान बचाकर कहती हैं आंखें सबकी, बिकने को हूं तैयार खुशी से जो दे दो। कुछ आत्ममुग्ध आलोचक कलावादी भी और गैर कलावादी भी यह कहते हैं कि कविता को ज्यादा समकालीनता से नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो जल्दी ही मर जाती है। समाज मरे तो मरे, पर कविता के जीने की चिंता होनी चाहिए। मैं कहता हूँ दूसरी बात। यह कविता 1948 की है। आज क्या स्थिति है? यह कविता झूठी हो गई है या ज्यादा सच्ची हो गई है? इस तरह से देखें तो रामधारी सिंह दिनकर भविष्यवक्ता कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। 50ों उदाहरण दिनकर से दिए जा सकते हैं कि उन्होंने कविता को इस तरह से साधा कि कविता समकालीन होते हुए सार्वकालिक हो सके। यही बड़े कलाकार की क्षमता होती है। दिनकर की कविता पढ़ते हुए नागार्जुन की याद आए तो मानना चाहिए कि दोनों में अनेक समानताएं हैं। पृष्ठ संख्या 87। दिनकर मार्क्सवादी नहीं थे, लेकिन उनकी कविता में पराधीनता, विषमता, शोषण और सामाजिक अन्याय के प्रति जैसा गहरा आक्रोश है वैसा बहुत कम प्रगतिशील कवियों के यहाँ दिखाई देता है। असल में भावना को संयमित करके कला में ढालने की कोशिश करने में बहुत सारे प्रगतिशील कवि मारे गए। अकारण नहीं है कि खुलकर कविता लिखने के कारण हिंदी आलोचना ने 30 साल तक नागार्जुन को कवि नहीं माना। नागार्जुन को मजबूरी में अपने पैसे से पुस्तकें छपवानी पड़ती थीं। तालाब की मछलियाँ नागार्जुन को स्वयं छपवानी पड़ी। यह हिंदी आलोचना की दुर्गति का सबूत है। यदि एक कवि के मन में पराधीनता, शोषण, उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय के प्रति गहरा आक्रोश है जिसे वह कविता में व्यक्त कर रहा है, तो प्रगतिशीलों द्वारा उसका स्वागत किया जाना चाहिए था। यह नहीं हुआ। दिनकर ने उस जमाने की राजनीति की चर्चा करते हुए जो कविताएं लिखी हैं उनमें से दो कविताएं सामने रखूंगा। उनकी एक कविता है समर शेष है। 1954 की यह कविता अनेक दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। दिल्ली में बहुत कवि रहते हैं, लेकिन दिल्ली क्या है इस पर ध्यान देने वाले कवि बहुत कम हैं। हिंदी में अकेले दिनकर ने दिल्ली पर तीन चार कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं को अलग अलग पढ़िए तो उनमें दिनकर की चेतना की चार अवस्थाएं दिखाई देंगी। अंग्रेजी सत्ता की केंद्र दिल्ली, स्वाधीनता आंदोलन के दौर की दिल्ली, आज़ादी के बाद की दिल्ली और बाद में और भी पतनशील दिल्ली। उन्होंने दिल्ली के विभिन्न रूपों पर कविताएं लिखी हैं। समर शेष है, बहुत प्रसिद्ध कविता है, यह भी दिल्ली पर है। दिनकर ने दिल्ली की सत्ता की जैसी व्यापक आलोचना की है, वैसे हिंदी की बहुत कम कविता में है। फूलों की रंगीन लहर पर ओ उतर आने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले, सकल देश में हाला हल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी शेष, भारत में अंधियाला है। अटका कहाँ स्वराज बोल दिल्ली, तू क्या कहती है, तू रानी बन गई बेदना जनता क्यों सहती है। सबके भाग दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विभा हुई बंदिनी बता किस घर में। यहाँ पतन की राजनीति की अभिव्यक्ति दिनकर ने की है, आगे फिर भविष्यवाणी उन्होंने की है। समर शेष है, अहंकार इतना हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। पृष्ठ संख्या 88, एक बहुत ही मार्मिक पंक्ति लिखी है दिनकर ने इस कविता के अंत में। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। ऐसी दृष्टि वाले कवि को ही प्रतिभाशाली कवि कहते हैं। इसे दिनकर ने 1954 में लिखा था। 1968 में फ्रांस के छात्रों की हड़ताल हुई, बहुत विशाल बल्कि लगभग क्रांति की तरह अनेक नारे थे। उनमें एक नारा था कि जो तटस्थ रहेंगे वह भी मारे जाएंगे, यह उनकी अमर पंक्तियों में से है। यह बात भी सच थी और आज भी न्याय और अन्याय तथा सच और झूठ के बीच में तटस्थता का जो नाटक करते हैं उनके बारे में यह पंक्ति लिखी गई है। आज़ादी के बाद जो देश का हाल है और जो तरह तरह के संघर्ष चल रहे हैं वर्षों पहले, उनकी ओर दिनकर ने संकेत किया था। हिंदी कविता में रामायण महाभारत की परंपरा की तरह एक और परंपरा है। जो भी विवेकशील कवि रहे हैं वे बौद्ध दर्शन को बहुत महत्व देते हैं। उनमें विवेकवाद तो है ही, वर्ण व्यवस्था का खंडन भी है। दिनकर ने बहुत पहले एक कविता लिखी थी, बुद्धदेव। इस कविता को पढ़कर लगेगा कि दिनकर गहरे स्तर पर प्रयोगवादी तो थे ही, वर्ण व्यवस्था के शोषण दमन और अन्याय के कितने विरोधी थे। उसका केवल एक अंश देखिए। आज दीनता को प्रभु की पूजा का भी अधिकार नहीं, देव बना था क्या दुखियों के लिए निठुर संसार नहीं। धन पिशाच की विजय, धर्म की पावन ज्योत अदृश्य हुई, दौड़ो बोधिसत्व भारत में मानवता अस्पृश्य हुई। गौतम बुद्ध और बौद्ध दर्शन से जो लगाव है वह एक विवेकवादी परंपरा है, इससे जुड़ते हैं दिनकर। दिनकर का काव्य हमारे सामने कुछ सवाल रखता है। एक सवाल तो यही है कि हमें कैसी कविता चाहिए, ऐसी जो सोए हुए को जगा दे या ऐसी जो जगे हुए को सुला दे। दूसरा सवाल यह है कि कविता व्यापक जन समाज के लिए है या मुट्ठी भर विशिष्ट जनों के लिए। कविता और आलोचक एक दूसरे की कविताएं पढ़ते रहेंगे या कविता व्यापक जन समुदाय में भी जाएगी। महान कवि वह होते हैं जो कुछ नया रचने की प्रेरणा देते हैं, नया समाज रचने और नया साहित्य रचने की प्रेरणा। दिनकर की दो पंक्तियों ने समाज रचने की भी प्रेरणा दी है और साहित्य रचने के भी। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। पृष्ठ संख्या 89, इसने संपूर्ण क्रांति को प्रेरित किया और इसी की आखिरी पंक्ति ने राजेंद्र यादव को सारा आकाश उपन्यास लिखने की प्रेरणा दी। मार्क्सवाद से दिनकर का संबंध कैसा था? मार्क्सवाद से दिनकर का संबंध राग का भी था और विराग का भी। मार्क्सवाद के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों से उनका संबंध राग का था, जो उनकी कविता से सिद्ध होता है। लेकिन हिंदी के मार्क्सवादियों के व्यवहार से उनका संबंध विराग का था। दूसरी बात यह है कि हिंदी के प्रगतिशील कवियों से उनका संबंध राग का था, लेकिन हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों से उनका संबंध विराग का था। अधिकांश मार्क्सवादी आलोचकों ने दिनकर की आलोचना की, इसका कारण यह है कि हिंदी के अधिकांश मार्क्सवादी आलोचकों ने सिद्धांत के आधार पर नहीं सुविधा के आधार पर आलोचना लिखी। रामविलास शर्मा ने सिद्धांत के आधार पर आलोचना लिखी, इसलिए अकेले उन्होंने दिनकर के उर्वशी विवाद में भाग लेते हुए दिनकर के पक्ष में लिखा। मार्क्सवाद से दिनकर का संबंध संक्षेप में रखता हूँ। 1944 में बिहार प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, उसमें दिनकर स्वागताध्यक्ष थे। उन्होंने जो भाषण दिया वह भी छपा। साम्राज्यवाद की जैसी आलोचना दिनकर ने की वैसी बहुत कम कवियों ने की है। आखिर क्या कारण है कि मार्क्सवादियों को दिनकर की साम्राज्यवाद विरोधी कविताएं भी पसंद नहीं आती? उन कविताओं की चर्चा कीजिए, उनकी कमजोरी की चर्चा कीजिए, कौन रोक रहा है? लेकिन चर्चा ही नहीं करेंगे। दिनकर ने 1969 में एक काम किया, भारत सोवियत मैत्री संघ की ओर से लेनिन की जन्मशती पर एक किताब छपी, लेनिन और साहित्य। उसमें हिंदी के तीन साहित्यकारों के लेख, पहला लेख दिनकर का ही है, दूसरा लेख विष्णु प्रभाकर का और तीसरा लेख भीष्म साहनी का है। उस लेख में दिनकर ने लेनिन के प्रति गहरे आदर और लगाव का केवल उल्लेख ही नहीं किया, बल्कि उनकी कविताओं से लगभग 15 जगहों का जिक्र किया जहां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लेनिन आते थे। दिनकर ने एक लंबी और बहुत ही ओजस्वी कविता लिखी थी, दिल्ली और मास्को। उस कविता में भी मास्को और उसकी समाजवादी नीतियां, व्यवहार और लेनिन सबकी बहुत तारीफ की है। तब उनको लगता है कि हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक या तो उनकी कविता पढ़ते नहीं, या पढ़ते हैं तो उस पर बात क्यों नहीं करते। उस लेख में दिनकर ने तीन चार कविताओं की ओर ध्यान दिलाया है। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है कस्मै देवाय, दूसरी कविता है बिफथगा, तीसरी कविता है बापू और चौथी कविता है मास्को और दिल्ली। इन सारी कविताओं पृष्ठ संख्या 90 में कहीं ना कहीं या तो लेनिन आते हैं या समाजवादी चेतना आती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूँ कि दिनकर का मार्क्सवाद से राग का संबंध था। दिनकर के और दो पक्षों के बारे में संक्षिप्त चर्चा होनी चाहिए। दिनकर ने काफ़ी आलोचनाएं लिखीं, उनकी आलोचना की कई किताबें हैं। दिनकर की आलोचना दृष्टि पर बात करने की जरूरत है। हिंदी के एक से एक बड़े आलोचकों ने छायावाद पर लिखा है, पर छायावाद को जो मूल्यांकन दिनकर ने किया है वह पहले का है। तब न नामवर सिंह की छायावाद मौजूद थी और न रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना आई थी। दिनकर के इस कथन पर ध्यान दीजिए, छायावाद हिंदी में उद्यम वैयक्तिकता का पहला विस्फोट था। केवल साहित्य की शैली ही नहीं, समग्र जीवन की परंपराओं, रूढ़ियों, शास्त्र, निर्धारण मर्यादाओं एवं मनुष्य की चिंता को सीमित करने वाली परिपाटियों के विरुद्ध जन्मे हुए एक व्यापक विद्रोह का परिणाम था, तथा मनुष्य की दबी हुई स्वतंत्रता की भावना को प्रत्येक दिशा में उभारने वाला था छायावाद। ध्यान दीजिए, नामवर जी ने वर्षों बाद यह बात अपनी किताब में घुमा फिरा कर कही है कि व्यक्तिवाद और उसका सार्थक रूप है वह। यह दिनकर मिट्टी की ओर में लिख रहे थे। दिनकर छायावाद को समग्र विद्रोह मानते हैं। दिनकर की आलोचना को गंभीरता से जांचने परखने की जरूरत है। यह जो छायावाद का मूल्यांकन है वह ना तो नंद दुलारी वाजपेयी के यहाँ है और ना ही शांतप्रिय द्विवेदी के यहाँ, ना नामवर सिंह के यहाँ है और ना रामविलास शर्मा के यहाँ। उन्होंने छायावाद की केवल इस बात के लिए आलोचना जरूर की कि उसमें जीवन की समस्याओं का सीधा साक्षात्कार नहीं है। यह तो रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। हमारे रामविलास जी यह मानने को तैयार ही नहीं है कि संसार में जो कुछ अच्छा है वह छायावाद में नहीं है। संसार का सब अच्छा छायावाद में ही है, और यदि छायावाद में नहीं होगा तो निराला में होगा। दूसरी बात दिनकर ने कही है कि छायावाद को जो रहस्यवाद सिद्ध करने की कोशिश हुई वह भी छायावाद के साथ ज्यादती है। रहस्यवाद अपने क्लासिकल रूप में छायावाद में नहीं है। उन्होंने यह कहा कि छायावाद में इस समाज की समस्याओं से किनारे जाने की जो थोड़ी चेतना है, चिंता है, उसको भारतीय कविता की परंपरा में देखना चाहिए। दो कविताओं को एक साथ देखिए। प्रायः पलायनवाद के उदाहरण के रूप में प्रसाद जी का उल्लेख किया जाता है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाभिक धीरे धीरे। दिनकर ने उद्धृत किया है गालिब को, रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो। गालिब के यहाँ जो है वह प्रसाद जी से अलग नहीं है, पहले हैं गालिब, प्रसाद बहुत बाद के हैं। दिनकर का कहना है कि इस कवि पृष्ठ संख्या 91 की मनोदशा को समझने की जरूरत है। दिनकर की एक अलग किताब है प्रसाद पंत मैथिलीशरण गुप्त, उसमें उन्होंने इन संबंधों की खोज की है। दिनकर ने अपने जमाने की कुछ सैद्धांतिक बहसों में भी हिस्सा लिया था, जैसे कला की स्वदेश्यता का सवाल। दिनकर कलावादियों के साथ एकदम नहीं थे। दिनकर ने बार बार जोर देकर कहा कि कला निरुद्देश्य हो ही नहीं सकती। उन्होंने यह जरूर कहा कि कला के उद्देश्य और राजनीति के उद्देश्य को एकम एक करना ठीक नहीं है। निरुद्देश्य कला का कोई मतलब नहीं है, विशेष रूप से साहित्य और राजनीति नाम का उनका एक निबंध बहुत ध्यान देने लायक है। इस निबंध में दिनकर ने लिखा कि क्रांति जनसमूह को जगाकर उसे नई सांस, नई संस्कृति और तरंगित होने वाले जीवन की ओर प्रेरित करती है। जीवन का आदेश है कि साहित्य नए साहित्य के निर्माण में योग दे। यह काम केवल कला को पूजने वाले साहित्य से नहीं हो सकता। इसलिए दिनकर अपनी सारी आलोचना में बार बार कलावाद के विरुद्ध खड़े दिखाई देते हैं। हिंदी के मार्क्सवादी भी अब साहित्यवादी ही हैं। उस साहित्यवाद का खंडन दिनकर पहले कर चुके हैं। दिनकर के मूल्यांकन में जो तेजस्विता है उसका एक प्रमाण रीतिकाल के मूल्यांकन में दिखाई देता है। रीतिकाल पर उनके दो लेख हैं। उन्होंने लिखा है कि घनानंद अनेक अर्थों में रीतिकाल के नहीं प्रत्युत छायावाद के कवि हैं। यह कहने की हिम्मत उस जमाने में किसी की नहीं थी और आज भी यह स्वीकार करने की तत्परता किसी में नहीं है। अगर आप रामचंद्र शुक्ल के विचारों से मिलाकर देखिए तो शुक्ल जी ने छायावाद की कविता से घनानंद की कविता की समानता की चर्चा अनेक स्तरों पर की है। दिनकर की आलोचना में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण स्थापनाएं हैं जिन पर नए ढंग से सोचने और विचार करने की जरूरत है। दिनकर ने संस्कृत पर गंभीर चिंतन किया है। आजकल जो सबसे अधिक संस्कृति का नाम लेते हैं वही इस देश में सबसे अधिक असांस्कृतिक कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। अब तो ऐसा लगता है कि संस्कृति और गुंडई लगभग पर्याय हो गई हैं। इस देश में संस्कृति के नाम पर कलम नहीं डंडे चलने लगे हैं। इसलिए संस्कृति पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। दिनकर के सांस्कृतिक चिंतन पर भी दिनकर संस्कृति के बारे में बहुत पहले से चिंतित रहे हैं। उनकी दो किताबें संस्कृत के चार अध्याय से पहले आ चुकी थी जिनका संबंध संस्कृति चिंतन से ही है। एक तो राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता और दूसरी किताब है हमारी सांस्कृतिक एकता। गंभीर विचार की एक किताब संस्कृति के चार अध्याय अब तक 15 बार छप चुकी है। गुलशन नंदा आदि के उपन्यासों को छोड़कर हिंदी के लेखकों को यह सौभाग्य नहीं मिलता कि उनकी किताबें 15 बार छपें। इस पुस्तक की लोकप्रियता हमें आकर्षित करती है। एक तरह से यह भारतीय संस्कृति पृष्ठ संख्या 92 विश्वकोश है। संस्कृति के बनने बदलने बिगड़ने और फिर बनने की जटिल समग्र और द्वंद्वात्मक प्रतिक्रिया की पहचान है संस्कृत के चार अध्याय में। जब यह किताब छपी थी तो यह प्रतिक्रिया हुई। उसके बारे में तीसरे संस्करण की भूमिका में दिनकर ने लिखा है, मेरी स्थापनाओं से सनातनी दुखी हैं और आर्य समाजी तथा ब्रह्म समाजी भी, उग्र हिंदुत्व के समर्थक तो इन ग्रंथ से काफी नाराज हैं। नाराजगी का एक पत्र एक मुस्लिम विद्वान ने भी लिखा है, यह नाराजगी क्यों है? दिनकर मानते हैं कि भारतीय संस्कृति सामाजिक संस्कृति है। सामाजिक संस्कृति माने क्या? समास व्याकरण का एक शब्द है, दो शब्दों के मेल से एक तीसरा शब्द बनता है और उसका नया अर्थ हो जाता है। यह समासिकता है कि दो चीजों के मिलने से एक तीसरी वस्तु बने और उसका नया अर्थ हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति के बारे में एक उदाहरण दिया करते थे। वे कहा करते थे कि भारतीय संस्कृति एक हुक्के की तरह है। हुक्के की विशेषता यह है कि हुक्का 10-20 वर्ष पुराना हो गया, उसका नरशा खराब हो गया तो नरशा बदल दिया गया और हुक्का वही रहेगा। 20-30 वर्ष बाद चिलम खराब हो गई तो चिलम बदल दी गई, फिर भी हुक्का वही रहेगा। 50-60 वर्ष बाद उसके नीचे का हिस्सा बदल दिया जाएगा और फिर भी हुक्का वही रहेगा। जैसे हुक्का होता है कि चीजें बदलती रहती हैं फिर भी हुक्का वही रहता है, वैसे ही भारतीय संस्कृति में बहुत सारी चीजें जुड़ती हैं, आगे बढ़ती हैं, फिर भी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति लगभग गंगा की तरह है। गंगा जहां से निकलती है उसको आप ध्यान में रखिए, समुद्र तक जाते जाते उसमें पच्चीसों नदियां मिलती हैं। जब कोई नदी मिल जाती है तो मिलने के बाद वह स्वयं गंगा का हिस्सा हो जाती है और वह नदी गंगा ही कहलाती है। इसलिए मैं तो कई बार भारतीय संस्कृति को संगम संस्कृति कहा करता हूँ। संगम संस्कृति है भारतीय संस्कृति। संगम संस्कृति का भी अर्थ वही है जो दिनकर सामाजिक संस्कृति में कहना चाहते हैं। जो लोग संस्कृति की शुद्धता की बात करते हैं, जो संस्कृति को धर्म का पर्याय समझते हैं, वह दिनकर से नाराज होते हैं। दिनकर जन्म शताब्दी समारोह का उद्घाटन भाषण।